मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। AFEIS के आज 25 मार्च 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों कल के डेली ऑडियो लेक्चर से हम लोगों ने भारत के जैव भौगोलिक वर्गीकरण की शुरुआत की है और उसके तहत दो क्षेत्र हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, दो क्षेत्रों के बारे में जान चुके हैं। उसमें पहला था ट्रांस हिमालयन रीजन और दूसरा था हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं, ये दोनों हिमालय से ही जुड़े हुए हैं। अब मैं आता हूं तीसरे भाग पर और वह है गंगा का मैदान, गैंगेटिक प्लेन। देखिए यहां सीधे सीधे गंगा का मैदान कह दिया गया है। जब आप इसे ज्योग्राफी में पढ़ते हैं तो आप गंगा यमुना का मैदान भी पढ़ लेते हैं, इसे गंगा यमुना और ब्रह्मपुत्र का मैदान भी पढ़ लेते हैं, है ना, लेकिन आप इसे गंगा का मैदान भी यहां कह सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है क्योंकि वो इंडिकेट कर देता है कि आप कौन से क्षेत्र की बात कर रहे हैं। देखिए जो गंगा का मैदान है आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि भारत का जो सबसे ज्यादा उर्वरक क्षेत्र है वो यही है, क्योंकि यहाँ जो गंगा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र और जो दूसरी नदियां हैं उसकी सहायक नदियां हैं वो मिट्टी बहा बहा करके लाती हैं और इस पूरे के पूरे क्षेत्र में फैला देती हैं। और ये आज से नहीं हो रहा है, हजारों लाखों साल से हो रहा है, तो यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत ही फर्टाइल है। और इस क्षेत्र की जब हम बात कर रहे हैं तो आप इसमें आपकी सुविधा के लिए जैसे राजस्थान से लेकर के उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तक का काफी बड़ा भाग इसमें शामिल हो जाता है। अब आपको केवल ये देखना है कि यहाँ किस तरह की वनस्पतियां हैं और किस तरह के जीव जंतु हैं। सच पूछिए तो जो उत्तर भारत के जो लोग हैं, चाहे वो युवा हों या वृद्ध हों या जो भी हों, इस क्षेत्र से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ होते हैं। तो आप किस तरीके के जानवरों से मुलाकात करते हैं या मुठभेड़ हो जाती है, किस तरह के पेड़ पौधे होते हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत तो आप अनुमान लगा ही सकते हैं, तो यहां मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा, इसे पश्चिम बंगाल भी शामिल है ना, और पश्चिम बंगाल में जैव विविधता की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व पाया जाता है और वह है मैंग्रोव, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सुंदरी वन। मैंग्रोव को लेकर के पूरी दुनिया में एक अलग तरीके से चिंता व्यक्त की जा रही है, क्योंकि पूरी दुनिया में जो सुंदरी वन है, ये जो सुंदरी है ये पेड़ का नाम है, और सच बताऊं तो ये बड़े सुंदर भी लगते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं, है ना, बिल्कुल ये समुद्र के या कह लीजिए कि नदियों के किनारे, ज्यादातर समुद्र के किनारे होते हैं। इनकी जो जड़ें होती हैं वो बिल्कुल जमीन के बाहर निकली हुई होती हैं और मिट्टी को जबरदस्त रूप से पकड़े हुए होती हैं। इनके जो पेड़ होते हैं वो तो मझोले कद के होते हैं, एकदम हरे से दिखाई देते हैं, बड़े खूबसूरत लगते हैं। बेहतर होगा कि आप इन वृक्षों को देख लें, सुंदरी वन पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल के सुंदरी वन भी बहुत तेजी से नष्ट हो रहे हैं, पूरी दुनिया के सुंदरी वन नष्ट हो रहे हैं। और ये कहा जाता है कि जो समुद्री तूफान आते हैं उन समुद्री तूफान से हमारी रक्षा करने में जो सुंदरी वन के जो वृक्ष होते हैं, सुंदरी वृक्ष होते हैं, ये बहुत मददगार होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे कि दूसरे जंगल जिन कारणों से नष्ट हो रहे हैं, लगभग वही कारण सुंदरी वनों के भी नष्ट होने में है। जहाँ तक जंतुओं का सवाल है, आप जानते हैं हाथी, गैंडा, घड़ियाल, भेड़, बकरी, ये सब के सब इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मैं नहीं समझता कि उसकी लिस्ट बताने की यहाँ जरूरत है। दोस्तों इसके बाद मैं नेक्स्ट में आता हूँ और वो है नॉर्थ ईस्ट रीजन। अभी हमने जो पूर्वी हिमालय, पश्चिम हिमालय की बात की वो तो एज ए होल की, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो हमारे स्टेट है, ठीक है, वो पूर्वी हिमालय क्षेत्र में आते हैं, लेकिन पूर्वी हिमालय क्षेत्र में सिर्फ नॉर्थ ईस्ट नहीं है, है ना। जब आप जम्मू कश्मीर से नक्शा देखिए, जब आप एक पाइप जैसा आपको दिखाई देता है तो उसमें तो दूसरे स्टेट भी है ना, वो पूर्वी हिमालय में, तो इसको आप रिपीटेशन मत समझिएगा। यहां तो स्पेशली हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात कर रहे हैं जो एक प्रकार से बायो डाइवर्सिटी की दृष्टि से बहुत संपन्न क्षेत्र हैं, भारत के बहुत ज्यादा समृद्ध क्षेत्र हैं, बहुत ज्यादा। और यहाँ जो वृक्ष मिलते हैं, जो वन मिलते हैं, आपको मालूम है कि सदाबहार वन भी मिलते हैं जिसे आप एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं, अर्ध सदाबहार वन भी मिलते हैं, नम पर्णपाती मानसूनी वन भी मिलते हैं, और साथ ही साथ घास के मैदान भी मिलते हैं। अब आप देखिए कि इकोसिस्टम के तहत कितने सारे स्वरूप आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना, और ये सब नेचुरल ही हुए हैं, मतलब ये कोई लगाए नहीं गए हैं, है ना, नेचर में अपने आप ये डेवलप हुए हैं। तो जब इतने किस्म के आप कह लीजिए इकोसिस्टम होंगे तो स्वाभाविक है कि वहां उसी तरह की विभिन्न विभिन्न वनस्पतियां होंगी और विभिन्न विभिन्न जीव जंतु भी होंगे, ये भी आपके ज्योग्राफी का हिस्सा रहा है, आप इसे भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है, जिसे आप पांचवा कह सकते हैं संख्या की दृष्टि से, वह है डेक्कन पेनिनसुलर रीजन, जिसे आप हिंदी में कहते हैं दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्र। दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्र यानी इसके साथ ही साथ आप लगभग लगभग अब साउथ इंडिया में एंटर कर रहे हैं, साउथ इंडिया में। दोस्तों ये जो क्षेत्र है जिसे हम दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहते हैं, इसे आप अगर नक्शे में आइडेंटिफाई करना चाहें तो उत्तर में जो सतपुड़ा पर्वत है, मोटे तौर पर कुछ लोग इसे नर्मदा नदी भी कह देते हैं, उससे नीचे के हिस्से को ले लीजिए, नीचे के हिस्से को, उसके नीचे हिस्सा, और इसके बाद तो उत्तर की तरफ तो हो गया नीचे का हिस्सा, उत्तर आपने दिशा बना ली और वो दिशा आपकी बन गई सतपुड़ा का पर्वत या नर्मदा नदी। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए अगर वो दृश्य चित्र आपके दिमाग में उतर पाए तो, और इसे जानना बहुत जरूरी है, भूगोल की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर जब आप नीचे की तरफ उतरते हैं यानी कि दक्षिण दिशा में उतरते हैं, तो आप देखिए कि दोनों तरफ समुद्र हैं, दोनों तरफ समुद्र हैं। आपके पूर्व दिशा में आपकी बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम दिशा में अरब सागर है, ठीक है। तो ये जो पट्टी है पूर्व और पश्चिम की, इसे हम फिर क्या कहते हैं, पूर्वी घाट और पश्चिम घाट, क्योंकि अब समुद्र आ गए। तो इसके आप दोनों तरफ से 200 किलोमीटर के मोटे तौर पर, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, पट्टी को निकाल दीजिए। तो अब जो बीच का हिस्सा बचा यानी कि नर्मदा नदी या सतपुड़ा पर्वत से नीचे दक्षिण की तरफ एकदम नीचे तक चले जाइए, और जो समुद्र के किनारे आ जाते हैं उनसे 200 किलोमीटर ऊपर की तरफ, तो बीच का जो हिस्सा बचेगा एक तरीके से त्रिभुज जैसा, उसे आप दक्षिण का प्रायद्वीपीय क्षेत्र कह लीजिए। अक्सर इसकी चर्चा होती है तो आपको मालूम होना चाहिए कि किसके बारे में बात की जा रही है। ये जो क्षेत्र है जब आप नक्शे पर आइडेंटिफाई करेंगे, तो अब आप देखिए कि जैसे जैसे हमारा देश, हमारा नक्शे में हम नीचे आते चले जाते हैं यानी कि उत्तर से दक्षिण की तरफ आते चले जाते हैं, वैसे वैसे हम उष्ण कटिबंध में एंटर करने लगते हैं, यानी कि जो 0 डिग्री जो इक्वेटर है, जो भूमध्य सागर है, उसके नजदीक पहुंचने लगते हैं। और उष्ण कटिबंध के नजदीक पहुंचने का क्या अर्थ है बायोडायवर्सिटी की दृष्टि से, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि जो दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वो बायोडायवर्सिटी के मामले में कितना इंपॉर्टेंट होगा, राइट। जो अगला है दोस्तों, अगला दो अगले हैं, दो को मैं एक साथ लेकर के चल रहा हूं, वो है पूर्वी तट और पश्चिमी तट, जिनकी चर्चा मैंने अभी अभी की है। पूर्वी तट यानी कि स्टर्न कोस्टल रीजन, जब मैं तट की बात कर रहा हूं तो पूर्वी समुद्री तट से मतलब है उसका, और पश्चिमी तट का मतलब है वेस्टर्न कोस्टल रीजन या वेस्टर्न कोस्ट। अब स्टर्न कोस्टल रीजन के बारे में जरा सा आप सोचिए कि क्या मैं आपको कुछ बता चुका हूं। जो मैंने मैंगो के बारे में बात की थी, सुंदरी वन के बारे में बात की थी, वो किस रीजन में होगा? हालांकि ठीक है वो हमने गंगा के मैदान वाले में उसे देखा है, लेकिन यहां पर कुछ क्षेत्र तो ऐसे होते हैं ना जो रिपीट हो जाते हैं। तो दोस्तों वो जो मैनग्रोव वन क्षेत्र है जहां बहुत तरह की वनस्पतियां पाई जाती है, पूर्वी तट में, पूर्वी तट में बहुत तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं, और आपको यह भी मालूम है कि वहां के जीवों में घड़ियाल और डॉल्फिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पर बाकायदे सिविल सर्विस में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, प्री की बात मैं कर रहा हूं। और फिर बंगाल में जो सुंदरवन वाला हिस्सा है वहां तो बंगाल टाइगर भी मिलते हैं, राइट। अब जो हमारा पश्चिम तट है दोस्तों, ये देश का सबसे अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र माना जाता है। पश्चिम तट, कभी अगर पूछा जाए पूर्व तट और पश्चिम तट में अंतर जैव विविधता की दृष्टि से, तो पश्चिम तट ज्यादा संपन्न है और इसे हॉट स्पॉट के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। हॉट स्पॉट, देखिए जैव विविधता जो मेगा हमने बात की है, मेगा डाइवर्सिटी कंट्री, वो अलग बात है, उसमें तो भारत ही है, लेकिन भारत के अंदर जो पश्चिमी घाट है वो हॉट स्पॉट के रूप में शेड्यूल्ड है, सूचीबद्ध है, लिस्टेड है, ये आपको मालूम होना चाहिए। प्री एग्जाम की दृष्टि से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत प्रजातियां यहां मिलेंगी आपको, वनस्पतियों की भी प्रजातियां मिलेंगी और आपको जीव जंतुओं की भी प्रजातियां मिलेंगी, ठीक है। अब प्रजातियों को गिनाने का ज्यादा अर्थ यहां नहीं है फ्रेंड, चूंकि वक्त कम है और मुझे अभी दो तीन रीजन और कंप्लीट करने हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है आइलैंड का रीजन, जो हमारे द्वीप हैं, द्वीप के बारे में आप जानते हैं कि हमारा अंडमान द्वीप है और जो दूसरे दूसरे द्वीप हैं, और इसमें जो अंडमान द्वीप है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए अंडमान, अब हम और ज़्यादा उष्णकटिबंध के नज़दीक पहुँच गए हैं, तो जो अंडमान द्वीप है, एक तो वहाँ उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, वर्षा वन आप कह लीजिए, और दूसरा है कि यहाँ कोरल रीफ बहुत मिलते हैं। हम लोग अंडमान गए हैं और वहाँ 10 दिन हम लोग रुके थे, बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने अंडमान निकोबार को देखा समझा, समुद्र में भी गए, अंदर भी उसके गए, जो भी उन्होंने व्यवस्था कर रखी है वहाँ, फिर बाकायदे प्रदर्शनी भी दिखाई जाती है, बहुत खूबसूरत खूबसूरत कोरल रीफ। तो ये जो अंडमान, जो हमारे जो द्वीपीय क्षेत्र हैं, जो आइलैंड रीजन है, वो जैव विविधता की दृष्टि से बहुत संपन्न है। इसके बाद आ जाता है फ्रेंड्स अर्धशुष्क क्षेत्र, जिसे आप सेमी एरिड रीजन कह सकते हैं, खासकर इसके तहत आप जो सेमी एरिड रीजन है, ये रेगिस्तानी क्षेत्र नहीं है, रेगिस्तानी तो हमारा अगला भाग होगा, सेमी एरिड है, शुष्क क्षेत्र है। जो शुष्क क्षेत्र होंगे वहाँ घास मिलेगी, झाड़ियाँ मिलेंगी, कटीले वन मिलेंगे, है ना, इस तरह की वनस्पतियाँ मिलती हैं, और उसी तरह की फिर वहाँ उसी तरह के जीव जंतु भी मिलते हैं। खासकर जो राजस्थान का कुछ हिस्सा है, गुजरात का कुछ क्षेत्र है, वह इनके अंतर्गत, इसके अंतर्गत आता है, और जो आखिरी है वो राजस्थान का मरुस्थल है, आप जानते हैं थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान। वर्षा नहीं होती है, बहुत कम वर्षा होती है, अब इकोसिस्टम के तहत वहाँ रेतीली भूमि है ना, और वहाँ जो जीव जंतु पाए जाते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है। और जब हम रेगिस्तान की बात करते हैं तो उसमें जो कच्छ का क्षेत्र है गुजरात का, वह भी इसी के अंतर्गत आता है। और स्पेशली एक बात मैं यहाँ जरूर बताना चाहूँगा कि जो सिविल सर्विस में पूछा गया इससे पहले कि चिंकारा और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वो इसी कच्छ के क्षेत्र में मिलते हैं, और खासकर अभी जो भारत में सम्मेलन हुआ था प्रजाति पक्षियों पर, उसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में बहुत बातचीत हुई है, क्योंकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की संख्या बहुत तेजी से कम होती जा रही है, और उसका कारण ये है कि वो हमारा पाकिस्तान से बॉर्डर पर है, और पाकिस्तान जो संगठन बना है इनके संरक्षण के लिए उसका मेंबर नहीं है, तो और पाकिस्तानी एरिया में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बहुत ज़्यादा हत्या की जाती है, शिकार किया जाता है, तो इनकी संख्या बहुत तेजी से घट रही है, आपको शायद ध्यान होगा। तो मित्रों ये 10 क्षेत्र हैं टोटल भारत के जैव भौगोलिक वर्गीकरण के, और मुझे लगता है कि ये आपको कठिन नहीं लगा होगा क्योंकि इसका सीधा संबंध आपके ज्योग्राफी के नॉलेज से है। तो फ्रेंड्स अब इस टॉपिक को समाप्त करने की आप मुझे इजाजत दीजिए, और साथ ही साथ आज के डेली ऑडियो लेक्चर को भी समाप्त करने की। नमस्कार।